अपना उच्च पद कठिन तपस्या योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतएव मैं ऐसा ही तपस्या योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तात्पर्य, हिरण्यकश्यपु का संकल्प ब्रह्मा जी के पद को ग्रहण करने का था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत दीर्घ थी। जैसा कि भगवत गीता 8:17 में पुष्टि की गई है, सहस्त्र युग पर्यंतम अरहदम ब्रह्मणो विदुहु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के तुल्य है। ब्रह्मा की आयु अत्यंत दीर्घ है, फलस्वरूप हिरण्यकश्यपु के लिए उनका पद प्राप्त कर सकना असंभव था। फिर भी उसका निर्णय था कि चूंकि आत्मा तथा काल दोनों शाश्वत हैं, अतः यदि वह उस पद को एक जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता है तो वह जन्म जन्मांतर तपस्या करता रहेगा, जिससे कभी न कभी उसे उस पद वह पद प्राप्त हो सके। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी आश्रिक वृत्ति का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और हिरण्यकश्यपु के माध्यम से हम लोगों को बतला रहे हैं कि हम लोगों में जो छिपा हुआ हिरण्यकश्यपु है, हम लोग भी ऐसा ही इच्छा करते हैं। तो प्रथम श्लोक में नारद जी बताए हैं कि हिरण्यकश्यपु को 5 इच्छा थी। हिरण्यकश्यपु राजन अजेयम अजरा अमरम आत्मानम अप्रतिद्वंदम एक राजम व्यधिस। उसकी एकमात्र इच्छा थी, वो बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? युधिष्ठिर महाराज से नारद जी राजस्व यज्ञ में हस्तिनापुर में यह बात कह रहे हैं। एक महाजन दूसरे महाजन को समझा रहा है। नारद जी एक महाजन हैं और महाराज युधिष्ठिर भी एक महाजन हैं। तो भगवत कथा कीर्तन में कोई कितना भी बड़ा हो, सबको सुनना चाहिए। ये नहीं कि वो तो नया भक्त कथा कह रहा है, मैं क्या सुनूंगा। नारद जी कह रहे हैं और महाराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं। एक महाजन दूसरे महाजन को सुना रहे हैं, क्योंकि भगवत कथा बहुत मधुर है और मधुर जो कथा है सबके लिए मधुर है, यदि बीमार ना हो तब। जैसे शुगर कैन, जो मिश्री है वो मीठा है सबके लिए सार्वभौम तरह से, लेकिन जिसको पीलिया रोग हुआ है, जंडिस हुआ है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे भगवत कथा मधुर है, मधुरतम है। मच्चित मदगत प्राणाबोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। इसी में रमण करते हैं, आनंद उठाते हैं जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है। तो इन दोनों का चित्त, जो ऋषि महाराज का और नारद जी का, दोनों का चित्त लगा हुआ है। तो नारद जी वही बात करें, हे राजन आप भी राजा हैं, तो गलती से आप काम मत कीजिए जो कि हिरण्यकश्यपु करना चाहता था। इसीलिए चुन चुन कर कहते हैं वो क्या बन जा अजेयम, जिसके ऊपर कोई विजय प्राप्त न कर सके। अजरा संसार का स्वरूप है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा इस संसार में बुढ़ापा है। बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता है, ये बुढ़ा न होने की प्रवृत्ति आज ही नहीं है, बहुत दिन से आ रही है। देखिये हिरण्यकश्यपु कर रहा है तपस्या कि मैं बुढ़ा न हूं। आजकल के लोग तपस्या नहीं करते हैं, बाल को केवल काला कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? बाल काला करने से बुढ़ापा थोड़ी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तो हेमा मालिनी कराती है, वो फेस लिफ्टिंग कराती है, तो उससे क्या बुढ़ापा नहीं जाएगा? क्या फायदा? हिरण्यकश्यपु बाल काला नहीं करने गया और फेस लिफ्टिंग नहीं किया, वो क्या किया है आगे बताया जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु अजरा बनना चाहता था, बुढ़ापा नहीं प्राप्त करना चाहता था, दूसरा बात। और तीसरा बात था अजेयम, सबसे अजेय हैं भगवान, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन संसार में कुछ समय के लिए कोई अजेय रहता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। वो एक है ना WWE, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग, तो हाँ WWF है। वहां पर एक जमाना था कि इंडिया में दारा सिंह का नाम था, अरे वो तो खाली आज ना, दारा सिंह का मैं पहले बात कर रहा हूं। पहले कोई खूब दूध पीता था, क्या तू दारा सिंह बनना चाहता है क्या? काम है सर, दारा सिंह बनना चाहता है क्या? तो अपने जमाने के दारा सिंह ये थे, उसके बाद दूसरा कोई आया, अब दारा सिंह चाहे चल भी नहीं पाते हैं है? तो अजेय कोई विजय प्राप्त न करे, कामना होती है जीवों में, ये सब कामनाएं कहां से आती है? क्योंकि भगवान हैं ऐसे, भगवान का यह गुण है, भगवान अजेय हैं, भगवान अजरा हैं, भगवान में बुढ़ापा नहीं है, भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, और भगवान अमर हैं, भगवान की मृत्यु नहीं होती है। तो ये तीन बात, अजेय, अजरा और अमर, ये तीन चीज। और उसके बाद चौथा जो था वो अप्रतिद्वंद्वम, राजाओं को हमेशा डर रहता है, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, इंद्र से लेकर के यहां तक जितने भी राजा हैं उनको अपने प्रतिद्वंदियों से डर रहता है। हिरण्यकश्यपु को भी अपने प्रतिद्वंदी से डर था, इसलिए अप्रतिद्वंदी बनना चाहता था, कोई उसका विरोधी ना हो है? कोई उसका चैलेंजर ना हो। और पांचवा चीज था एक राजन, एकराट सम्राट बनना चाहता था, इस ब्रह्मांड का एक छत्र चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। तो ये पांच कामनाएं थी। हम लोगों के जीवन में कुछ न कुछ कामना होनी चाहिए, बिना कामना के जीवन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यूजलेस लाइफ है यदि कोई कामना ना हो, यदि कोई गोल ना हो, यदि कोई लक्ष्य ना हो। हिरण्यकश्यपु के सामने लक्ष्य था इन पांच वस्तुओं को प्राप्त करना। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बैक टू गॉड हेड, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अरे डिसाइड तो करो, लक्ष्य कुछ होना चाहिए ना। हरिओम जगह का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जय गोविंद प्रभु का लक्ष्य क्या है? वेरी गुड। श्रीनाम प्रभु का लक्ष्य क्या है? रामचरण प्रभु देखिए, लक्ष्य कई एक प्रकार के होते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उससे यदि पूछा जाए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो वो कहेगा कि मेरा लक्ष्य है कि अपने क्लास में फर्स्ट आना है। तो बच्चा पूछो क्या तुम्हारा लक्ष्य है, इंजीनियर बनूंगा, है? कोई कुछ बनेगा। तो दो प्रकार का लक्ष्य है, एक जो है तटस्थ और एक है स्वरूप। तटस्थ लक्ष्य है अलग अलग, वो एक टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार प्राप्त होता है। जय गोविंद ने प्रभु ने कहा कि हमारा लक्ष्य है मंदिर बनाना, वेरी गुड, लेकिन ये तटस्थ लक्ष्य है, ये स्वरूप लक्ष्य नहीं है। किसी अभी किसी ने कहा कि नहीं मेरा लक्ष्य है अभी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए फर्स्ट क्लास का राजभोग बनाऊंगा, ये तटस्थ लक्ष्य है, लेकिन स्वरूप लक्ष्य यही है प्रेमापमर्थो महान अटेनिंग लव ऑफ गॉड, भगवत प्रेम की प्राप्ति। अब कोई भी लक्ष्य हो, चाहे स्वरूप लक्ष्य हो या तटस्थ लक्ष्य हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब यदि बैठे रहेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, करना पड़ेगा कुछ। यदि लक्ष्य है मंदिर बनाना तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जगविंद प्रभु आपका उत्तर सुन करके, है? हमारा भी वही लक्ष्य है, अभी आजकल के लिए वही लक्ष्य है। जैसे अर्जुन से पूछा गया कि तू क्या देख रहा है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, अर्जुन ने क्या कहा, हाँ चिड़िया का आंख देख रहा हूं। उसका लक्ष्य था आंख वेदना, उसका लक्ष्य नहीं था कि गुरु जी के परीक्षा में पास हो जाऊं, वो नहीं था, चिड़िया का आंख वेदना। तो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए हम लोगों को। एक तो लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, सब जीव के लिए लक्ष्य है, प्रभुपाद जी निर्धारित कर चुके हैं, बैक गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड एंड ऑब्टेनिंग लव ऑफ गॉड हेड, भगवत प्रेम की प्राप्ति असली लक्ष्य है। लेकिन उससे पहले ये सब जो स्वरूपगत लक्ष्य है, सॉरी तटस्थ लक्ष्य है, इसको हमें प्राप्त करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप यहां पर उस लक्ष्य निर्धारित किया, पांच लक्ष्य था, एक नहीं पांच लक्ष्य से, और अंत यही था कि वह एकराट चक्रवर्ती सम्राट बने। अब उसके लिए वह कार्यशील हुआ जो कि बताया गया है आगे, सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम उर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पदांग पाद अंगुष्ट अंगुष आश्रित अवनी। अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ काम करता है, संबंध अविधेय एंड प्रयोजन। अब अविधेय कुछ करना चाहिए, हाँ लक्ष्य निर्धारित हो गया, वो हमारा प्रयोजन है, वो करना है, तो संबंध अविधेय को हम नहीं भूल सकते हैं, अविधेय हम लोग करना चाहिए। यदि मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य है तो बैठे बैठे नहीं आएगा, करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार है, ये पवर संसार है, प फ ब भ और म, प मतलब परिश्रम, यहां पर सब लोग परिश्रम करना है, कर्मणि वाधिकारस्ते मां फली सुखदाचना, कर्म करना करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप क्या किया, स तेपे उस वह तपस्या करने के लिए निकला, ये सज्जु का समय था। तपस्या एक ऐसी चीज है ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भक्ति देवी जो है वह कल्प वृक्ष के समान है, एक अच्युतानंद महाराज कहा करते थे कि इस्कान कल्प वृक्ष के समान है, इस्कान में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिलेगा, मंगला आरती नहीं आने का बहाना चाहिए आराधना तो वही मिल जाएगा, है? क्या हो जाएगा आराधना बहाना, तबीयत खराब है, सर्दी बुखार आ जाएगा, बहाना मिल जाएगा, बहाना कभी नहीं है। तो इस कान में जो चाहिए वो मिल सकता है, कल्प वृक्ष के समान है इस कान। उसे भक्ति हम करेंगे तो भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, भक्ति देवी सब कुछ दे सकती है, तपस्या। और इन सब का लक्ष्य क्या है, चाहे तपस्या है चाहे भक्ति है, इसका लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण हैं कि पेट में भोजन डाल देंगे तो शरीर के अंग प्रत्यंग स्फुरित हो जाएंगे, पेड़ के जड़ में जल डालेंगे तो पेड़ का पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो सतयुग में लोग तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते। अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम इदाम घई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदर कीर्तनम। सतयुग में लोग भगवान को प्रसन्न करते थे तपस्या कर करके। तो हिरण्यकश्यप अब तपस्या करने गया लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। सौते पे कहां पर मंदरायाम, मंदराचल के घाटियों में तपस्या के लिए ऐसी स्थलियां चाहिए, पहाड़ की घाटी हो, नदी का किनारा हो, सुनसान एकांत स्थान जहां किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो, वहां तपस्या की जा सकती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में तपस्या संभव नहीं है, कहीं जंगल नहीं है, और सब जगह डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है, ही उपद्रता, एक नहीं अनेक उपद्रव ही मतलब निश्चय ही है। तो वह मंदराचल के घाटियों में तपस्या करने के लिए गया। परम दारुणम, कैसा तपस्या कर रहा था वह? परम दारुणम, अत्यधिक कठिन, अत्यंत कठिन तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप। अब यहां पर नारद जी बतलाते हैं कि वो तपस्या कठिन था। हम कहते कठिन तपस्या था तो उसका मतलब क्या है, कैसा कठिन था? कहते ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, पहला नंबर तो सीधे पैर सॉरी हाथ ऊपर किया था, और नभो दृष्टि, नभ मतलब आकाश में दृष्टि, नभो दृष्टि का मतलब अपलक, यानी कि पलक गिरा रहा था, नहीं बात ना, अपलक दृष्टि से, और पाद पाद अंगुष्ठम, अंगुष्ठम मतलब अंगूठा, पैर के अंगूठा पर आश्रित, मतलब आश्रित होकर के खड़ा होकर के सहारा लेकर के, अंगूठे के सहारा खड़ा होकर के, अंगूठा पर, एड़ी पर नहीं, पैर पर नहीं, एड़ी पर नहीं, अंगूठा पर, अंगूठा पर खड़ा होकर के तदासन में, दोनों हाथ ऊपर कर करके सीधे, आप लोग करो थोड़ा पता चल जाएगा, सीधा सीधा होना चाहिए नहीं ये बिल्कुल सीधा करना एक और परिचय देता है, पता है किसी को स्पाइन इधर प्रॉब्लम होगा ना, जिसका सीधा हो गया समझ लो कि तकलीफ नहीं है, जिसका सीधा नहीं होगा समझ लो कि इधर कोई गड़बड़ी होगा आज नहीं तो कल। हाँ प्रणायाम नहीं योग, ये तड़ासन है, तड़ासन पर होकर के, लेकिन तड़ासन पर प्राय लोग एड़ी पर खड़ा होते हैं, लेकिन ये अंगूठा पर, इसीलिए कहते हैं परम दारुणम। तपस्या कैसा कर रहा था नारद जी? परम दारुणम, अत्यधिक कठिन तपस्या कर रहा था, लेकिन था पृथ्वी पर अवनी है, और तपस्या में ऐसा लीन था, ऐसा लीन था कि उसके पास जिलेट का वो सेविंग फोम और जिलेट का वो रेजर नहीं था सेविंग करने के, वो सेविंग भी बेचारा नहीं किया ना, तो प्रसाद माल था प्रसाद खाने के लिए, तपस्या से ही जटा धीत अतिधीरे जे संवर्ता का युवांश भी तस्मिन तपस्या तपमाने देवा अस्थानी निभेज रे। जब इधर हिरण्यकश्यप तपस्या में बहुत दिन लग गया था, जटा युक्त हो गया था उसका शरीर, देवता लोग बड़े चैन से अपना अपने अपने घर पहुंच गए थे, क्योंकि जितना दिन हिरण्यकश्यप राज कर रहा था सब देवता लोग चूहे के समान बिल में घुस गए थे, है? कोई बाहर नहीं था। जब तपस्या करने चला गया तब सब लोग बाहर बिल से निकले है? और अपने अपने स्थान जाकर के भोग रहे थे। इधर देवता लोग इधर भोग रहे थे, हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था और उसके तपस्या से इतना ताप निकलने लगा, उसके तपस्या के प्रभाव से तस्य मूर्धन समुद्भूत सदधूमो अग्नि तपो मयः, मानो धुआं निकल रहा था तपस्या से उसके शरीर से, इतना चमत्कार युक्त उसका शरीर हो गया था, उसे आग लग गया हो, धुआं निकल रहा था, तप निकल रहा था। और यह धुआं और ताप पूरे दसों दिशाओं को रोक दिया, आच्छादित कर दिया। अब धुआं में ऐसे ही ढाई ढाई होता रहता है और वो गर्म गर्मी युक्त धुआं हो है? तो ताप से इतना ताप था, एक तो धुआं युक्त था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसमें इतना ताप था कि भूमंडल के जितने चर और अचर थे सब लोग तप्त हो रहे थे, दिशाएं प्रज्वलित हो रही थी, आकाश से तारे टूटकर गिर रहे थे, नदियों समुद्रों तालाबों के जल खौल रहे थे। जाड़ा और गर्मी के दिन में यदि देखा जाए तो जाड़ा का दिन सहन हम कर सकते हैं, वो भी खतरनाक है, लेकिन साधन है सहन करने का सबके लिए कुछ न कुछ। लेकिन गर्मी के दिन में गर्मी बहुत खतरनाक होता है, दोनों खतरनाक है, लेकिन जाड़ा के दिन स्वेटर पहन सकते हैं, चादर ले लेंगे, ब्लैंकेट ले लेंगे। अब गर्मी में कितना देर तक पानी है उगर हो गए, नदी में ठंडा लगता है, दिन भर नदी में थोड़े रह सकते हो, जाड़ा के दिन स्वेटर पहन घूम भर सकते हो है? सबके पास तो एयर कंडीशन है नहीं, और तो एयर कंडीशन थोड़े सब जगह लेकर जा सकते हो गर्मी के दिन में, जाड़ा में तो स्वेटर पहन सब जगह जा सकते हो, गर्मी के दिन में नहीं जा सकते हो, तो गर्मी खतरनाक है। तो सब लोग जल रहे थे। तेन तप्ता दिवं तक्त्वा ब्रह्मलोकं जयं सुरा धात्रे धात्रे विज्ञापयाम आसु देवदेव जगतपते दैतेन्द्र तपसा तप्ता दिवि अस्थातुं न शक्नुमम। अब सब देवता लोग तप्त होकर के, इन लोगों का भी हवा पानी बंद हो गया, सब देवताओं का भी परेशान हो गए, ये भागे सब वहां से है। सब लोग झुलस रहे थे हिरण्यकश्यप के तपस्या से। तेना तप्ता दिवं त्यक्त्वा, अपने अपने लोक लोकांतर को छोड़ करके भाग रहे थे, जैसे घर में आग लगी और कैसे व्यक्ति जान बचाने के लिए भागता है, लोग भागे। और भागते भागते ब्रह्मलोकम जजु सुरा, सब के सब देवता लोग ब्रह्मलोक सत्यलोक पहुंचे, यहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो विश्व ब्रह्मांड का धारण करते हैं, धात्री धारण करने वाले। उनके पास से देवता लोग जाकर के अपना विज्ञप्ति यानी एप्लीकेशन अब दे रहे हैं, वाणी के द्वारा अब कह रहे हैं, जा करके निवेदन कह रहे हैं। कहते हैं देव देव जगतपते, हे जगतपति, ब्रह्मा जी को यहां पर देव देव जगतपति कहा गया है, कृष्ण को भी देव देव जगतपति कहा गया है। तो कह सकता है कि ब्रह्मा जी को यहां पर देव देव जगतपति क्यों कहा गया है, क्योंकि समस्त जितने भी देने वाले हैं उन लोगों के भी जन्मदाता हैं ब्रह्मा जी, देवताओं के भी देवता हैं ब्रह्मा जी और जगतपति, ऐसे कृष्ण जगतपति हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा गया है, भगवान शिव को भी भगवान कहा गया है, क्योंकि भगवान के ये लोग शक्ति हैं, भगवान के आदेश से ये कार्य करते हैं, इसलिए इनको जगतपति कहा गया है। दैतेन्द्र तपसा तप्तः। अब हाथ जोड़ करके सब प्रार्थना करें कि हे जगतपते, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, दैतेन्द्र तपसा तप्त, हम सब के सब लोग झुलस रहे हैं, तप्त हैं दैतेन्द्र हिरण्यकश्यपु के तपस्या से। तो मानो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, स्वर्ग लोग छोड़कर के अन्य जगह चले जाओ, तुम लोग पहले बार तप्त हुए हुए हो, कई एक बार तप्त हुए हो हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से, असुरों के अत्याचार से, दूसरे जगह चले जाओ। तो कह रहे हैं मानो कहीं जगह नहीं है, दिवी अस्थातुम न सकनुमम, हम लोगों को कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा है जहां कि हम लोग रुक सके। मानो ब्रह्मा जी कह हमको कि भैया तू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हमको भजन करने दो, हम अपना काम कर रहा हूं, भगवान का सेवा कर रहा हूं, करने दो, तुम लोग जाओ दूसरी जगह चले जाओ, वहां जगह नहीं है, दूसरे मंदिर चले जाओ, है एक जगह जगह नहीं दूसरे मंदिर चले जाओ ना। सब मंदिर परेशान, सब मंदिर में परेशानी हो रही है पूरा। तप्ता दी अस्थातुम न सकम, हम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है, सब जल रहा है, हाहाकार हो गया है, आप बचाइए, त्राहिमाम त्राहिमाम। तस्य च उपशमन भूमन विधे ही यदि मन से लोका न यावन भक्षन्ति बलिहारा तवाभू। तो मानो अब कह रहे हैं कि अरे हे ब्रह्मा जी, हम लोगों को अपना ज्यादा चिंता नहीं है, ठीक है हम लोग मर जाएंगे, तपस्या कर रहा है उसके ताप से जल करके, लेकिन आप जो क्रिएशन कर रहे हैं ना, सृष्टि पर भी बड़ा संकट आया हुआ है, हम ही लोग नहीं मर रहे हैं। तस्य च उपशमनम, च का मतलब होता है कि जितने भी प्राणी हैं आपके द्वारा सृष्टित, आप सृष्टि कर रहे हैं ना, आंख बंद कर सृष्टि कर रहे हैं और हिरण्यकश्यपु जला रहा है उधर, सब लोग जल जाएंगे। तस्यम च उपशमनम, उपशमनम सब के सब समाप्त हो जाएंगे, सब चर अचर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हे भूमन, हे महापुरुष, हे महान विचारशील वाले भूमन, महामन भूमन ये सब शब्द हैं, महामना भूमना, भूमन मतलब गंभीर, गंभीर मन वाले थिंकर है? और कहते हैं विदेही यदि मन से, यदि आप समझते हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं हमारे कहने में कुछ तारतम्य है, हमारे कहने में कुछ वजन है, जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, लोकान्न यावन क्षम्यति, आप कुछ ऐसा कुछ काम कीजिए कि विश्व के लोगों के सारे निवासी जिसे बच सकें, उन लोगों का वे भूलत ना हो सके। और क्या कर सकते हैं हे ब्रह्मा जी, हम लोग देख रहे हैं कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो इस हिरण्यकश्यपु को शांत कर सकता है, इस क्योंकि यहां पर अविभू, विभू मतलब सर्वसमर्थ और अविभू मतलब समर्थों में समर्थ है, आप महान हैं, आप ही कर सकते हैं, हम लोगों से नहीं हो पाएगा। तस्यायं किलं संकल्पः चरतो दुश्चरत तप श्रेताम किम्ना विदितः तवा तथापि निवेदितम्। मानो ये देवता लोग कभी तपस्या किए नहीं है, ये लोग थोड़ा मा तपस्या किए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बहुत बड़ा तपस्या किए थे। जब वे अपने उद्गम स्थान को खोज रहे थे, जब उन्हें अपना उद्गम स्थान प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्हें एक वाणी सुनाई पड़ा, तप तप तप, और ब्रह्मा जी जाकर के तपस्या किए थे। तो जैसे लोहा को लोहा काटता है वैसे जो तपस्या में दृढ़ निश्चयी है उसके तपस्या को भंग कर वही कर सकता है जो तपस्या के विषय में जानता है। तो ये अपना डंडा अपना डाल दिए, अपना सरेंडर हो गए देवता लोग, हम लोगों में वो शक्ति नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तपस्या नहीं किए हैं। ये हिरण्यकश्यपु कोई ऑर्डिनरी तपस्या नहीं करे, तस्याम किल संकल्प चरतो दुश्चरत तप, दुश्चरत तप, ये ऐसा तपस्या कर रहा है जो अत्यंत कठिन तपस्या है। और आपसे तो छिपा नहीं होगा, आप जानते ही होंगे कि वो किस लिए कर रहा है। मानो ब्रह्मा जी कुछ नहीं कह रहे थे, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कह रहे थे, तो ये लोग एक तरफ देवता लोग कहते हैं ठीक है, जब आप पहले मनसे शब्द कह चुके हैं ये लोग, यदि आप उचित समझें तब ऐसा कार्य करें, विधे ही यदि मनसे, यदि आप उचित समझे तो उसको रोकिए। लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी कुछ नहीं कहे, संतावना नहीं दिए, तो अब एक बात एक कह रहे हैं जो कि इस श्लोक में है, बेचारा के समान ही देवता लोग कहते हैं ठीक है हम लोग तो मरिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन जिसका आप सृष्टि कर रहे हैं सृष्टि में सब में से कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। अब डायरेक्टली इनको कह रहे हैं कि हे पितामह, हम लोगों ने सुना है कि यह जो हिरण्यकश्यपु है वो आपके विषय में सब कुछ जानता है, हैं? अरे वो तो ऐसा प्लान किया है कि तपह योग समाधिना, इस तीन के द्वारा वो क्या करेगा, वो आपको भी घर निकाला करने वाला है, हैं? वो ऐसा तपस्या करेगा, उग्र तपस्या करेगा कि वो आपका भी स्थान प्राप्त कर लेगा। कैसा है देवता लोग, कम पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिक्स है, कौन पॉलिटिक्स है, भय दिखाना, ब्रह्मा जी का भय दिखा रहे हैं कि हम ही लोगों पर आफत नहीं है, ये आप पर भी आफत है, आपका भी पद जाने वाला, हम तो मरेंगे मरेंगे लेकिन आपका आपका क्या होगा, हाँ अपना भी देखिए। कहें सृष्टवा चर अचरम इदम, वह जान गया है कि ये चर और अचर इस सबका जो सृष्टि है वह तपस्या से होता है। भागवतम में श्लोक है कि भगवान तपस्या से सृष्टि करते हैं, भगवान तपस्या से संहार कराते हैं, और भगवान तपस्या के द्वारा मेंटेन करते हैं। जन्मादर्श तुन्यादर्त चार्थी सुविज्ञ स्वराट, क्योंकि वे स्वराट है। तो चर अचर का, अब तप, तप मतलब यू नो व्रत उपासना आदि को तप कहते हैं, जैसे एकादशी, अभी कल एकादशी होगा राइट, तो एकादशी को न खाना भी तपस्या है, उपासना करना भी तपस्या है, है? और व्रत उपासना इत्यादि को तप कहते हैं। और योग अष्टांग योग, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये योग है। और इस प्रकार से ये निद्रा योग में है। अब निद्रा योग में हो नहीं, सुन रहे हो, ध्यान योग में, ध्यान योग, क्या मैं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, अभी मैं कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ध्यान योग में तो पता चल जाना चाहिए ना, निद्रा योग में पता नहीं चलेगा। तो योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, समाधि का मतलब तो समधि, हमारा जो धी है बुद्धि है वो बारहों के बारहों बुद्धि भगवान में अंतर्निहित हो जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, उसे समाधि कहते हैं। और समाधि की स्थिति में योगी भगवान का सब जगह दर्शन करता है, कण कण में भगवान का दर्शन करता है, वो ध्यान की स्थिति पर ही होता है। देखिए दो प्रकार का योग है, बहिरंग योग और अंतरंग योग। तो प्रत्याहार तक ये बहिरंग योग है, और ध्यान किसी वस्तु का ध्यान किया जाता है, जैसे कि ध्रुव महाराज नारद जी भगवान का जैसा वर्णन किए थे, एक एक अंगों को वे एक चित्र के रूप में बनाए, वो ध्यान से हुआ। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी वो ड्रैगन वो सांप बनाना होता है ना, वो पीस में होता है इधर उधर, है उसको जुटा करके ध्यान से करते 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 सांप बना देते हैं, है? तो वैसे ही नारद जी से उपदेश सुने गुरु महाराज, लेकिन उसको समाधिस्त किए, ध्यान मग्न होकर के भगवान को जोड़े एक तरह से। तो ध्यान मतलब उस वस्तु के ऊपर कंसंट्रेशन करना, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान जब ऐसे ध्यान करेंगे तब आएगी धारणा। जैसे हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, यदि ध्यान से भगवान का दर्शन करेंगे तो ध्यान धारणा के रूप में आ सकता है। लेकिन हम लोग भगवान का दर्शन कभी ध्यान से करते नहीं है, नहीं तो यहां पूछा जाए कि स्वयं भगवान कौन सा ड्रेस पहने थे, किस कलर का, तो अरविंदाक्ष प्रभु आप क्या बताओगे? भगवान का ड्रेस सुबह में मंगला आरती में क्या था? यही है ध्यान। ध्यान रहेगा तो याद रहेगा। अच्छा कल क्या भगवान पहने थे, चलिए पुजारी लोग बताइए। पुजारी लोग बताइए कल भगवान कैसा ड्रेस पहने थे बाबू? हैं? अब हम लोग देख सकते हैं हम लोग कितना ध्यान करते हैं। रामचरण जी आप बताइए, भगवान मुकुट पहने थे कि नहीं आज मंगल आरती में? एनीवे मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं भी उसी में हूं, मुझे भी याद नहीं है, ऐसा बात नहीं, कल आपको ही कह रहा हूं। तो ये प्रमाणित करता है कि हम लोग ध्यान से नहीं करते हैं, हम लोगों का अटेंशन जो है वहां पर नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है, एकांतिक भाव से भजन नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान बहुत जरूरी है, जब ध्यान होगा तब धारणा आएगा, और जब धारणा होगा तब समाधि यानी भगवान का सब जगह उसी स्वरूप का आप सब जगह दर्शन कर सकते हैं। ध्यान धारणा और समाधि। तो यह हिरण्यकश्यपु ध्यान लग गया था, व्रत ये व्रत ले लिया था कि मैं उनके पद को प्राप्त करूंगा, और उसके लिए बिना खाए पिए वह आसन पर तपस्या कर रहा था, योग में नीत हो गया था। अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्य, सर्वधिष्णेभ्य ब्रह्मा जी का जो पद है, जो सत्य लोक है, सबसे उच्चतम लोक है इस विश्व ब्रह्मांड में, उसके ऊपर वैकुंठ जगत है। तो सर्वधिष्ठ परमेश्वरी आसनम, अब स्पष्ट देवता लोग कहते हैं कि सत्य लोक को तो प्राप्त करेगा ही, सत्य लोक में आकर के परमेश्वरी निज आसनम, जो आपका आसन है ना जिस पर आप बैठते हैं, वो खाली करा देगा, आपको भी ताड़ी पार कर देगा हिरण्यकश्यप। तो ब्रह्मा जी मानो कहते हैं अरे तुम लोग, अब ब्रह्मा जी का मुंह खुला है, अब तक से नहीं बोला, अब मुंह खुला, और ब्रह्मा जी कहते तो क्या बात करते हो तुम लोग, वो क्या तपस्या करेगा, तुम लोग मालूम है कितना तपस्या किया हूं, अरे वो तो प्राणी है संसार का, मर जाएगा, हमारा जीवन अवधि कितना लंबा था, बहुत दिन तपस्या किया, तो मानो देवता लोग कहते हैं वो जानता है इस बात को, उसको मालूम है कि आप बहुत दिन तपस्या किए थे, और वो यह भी जानता है कि आत्मा और काल दोनों अमर है, तो कमर कसकर तैयार तपस्या कर रहा है। अरे एक जन्म नहीं कई एक जन्म तपस्या करूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करके रहूंगा, बस अब आप देखो क्या करना है, है? तो वो लोग भी कहते हैं कालात मनुष्य नित्यत्व, वो जानता है कि आत्मा अमर है और समय भी अमर है। प्रभुपाद जी भी यहां पर कहते हैं ना, फिर भी उसका निर्णय था कि चूंकि आत्मा था काल दोनों शाश्वत है, अतएव यदि वह उस पद को एक जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता है तो वह जन्म जन्मांतर तपस्या करता रहेगा, जिसमें कभी न कभी उसे उस पद की प्राप्ति हो सकती है। तो पितामह ये सोचनीय बात है, इसी जन्म का बात नहीं है। आप मत सोचिए कि मर जाएगा हमसे पहले, मरेगा नहीं, वो मरने के बाद भी जानता है कि आत्मा अमर है और वो तपस्या जन्म जन्मांतर तक करता रहेगा। तो इस प्रकार से देवता लोग जब ब्रह्मा जी से कहे और ब्रह्मा जी उनके बातों को समझे कि उसमें कोई तथ्य है जो कह रहा है, और उसके बाद ब्रह्मा जी आए हैं हिरण्यकश्यप के पास, वो तो कथा आप लोग सुनेंगे। लेकिन अब तक से जो ये 10 श्लोकों में जो बात बताई गई है, इसका सारांश इसी प्रकार से है कि 5 चीजों प्राप्ति के लिए, वो 5 चीज कौन कौन था जिसके लिए हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था। चक्रवर्ती सम्राट, ओके, एक बार अमर बनने के लिए, अजर बनने के लिए, अजय बनने के लिए, कोई प्रतिद्वंदी नहीं, वेरी गुड, हो गया। तो इसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। वो कहे तपस्या कर रहा था, तपस्या का वर्णन कैसा किया गया इसमें परशुराम, कैसा तपस्या हरण कैसे पुकारा, कैसे कर रहा था, बताओ तपस्या का साधन क्या था, हैं? अंगूठे पर, हाँ, दोनों हाथों पर, और हाँ आकाश को, नवदृष्टि आकाश में। वो तपस्या कैसी थी माता जी ने बताओ, हिरण्यकश्यप की तपस्या कैसी थी वर्णन किया गया यहां पर, माता जी लोग प्रसाद का समय हो गया है लेकिन बताओ, उग्र तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप, हैं? उग्र तपस्या कर रहा था। तपस्या करने कहां पर गया था, मंदराचल की घाटियों में, उसके तपस्या से क्या हो रहा था श्री चरण प्रभु, जो तपस्या कर रहा था तो क्या हो रहा था, वो तो डर गया, लेकिन डरने से पहले कुछ हुआ ना, हाँ रामचरण प्रभु बताइए, श्री चरण नहीं बताए, रामचरण बताएंगे, बताइए, हाँ हाँ छा गया, हाँ और ताप भी था, गर्मी भी था, दो प्रकार का लक्ष्य मैं बताया था, कौन बता सकता है, तटस्थ लक्ष्य किसे कहते हैं, तट पर जो स्थित हो, नदी का तट हो, समुद्र का तट हो, कभी कभी पानी आ जाता है इधर और कभी कभी उधर चला जाता है, बदलता, जो बदलता रहे उसे तटस्थ कहते हैं। किसी वस्तु के पहचान के लिए लक्षण होते हैं, और दो प्रकार के लक्षण हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, और स्वरूप मतलब जो कभी बदले नहीं, स्वरूप उसका अपना रूप है। तो वैसे ही लक्ष्य भी दो प्रकार का, स्वरूप लक्ष्य और तटस्थ लक्ष्य। तो स्वरूप लक्ष्य क्या है? ब्रह्मचारी स्वरूप लक्ष्य क्या है? नहीं, आपका स्वरूप भगवान छोड़ो, आपका स्वरूप लक्ष्य क्या है? लोकेश्वर प्रभु, हाँ जो मैं बताया वही भगवत प्रेम की प्राप्ति करना है, ये स्वरूप लक्षण है। ऑल राइट नारद जी, छुट्टी कर दिया जाए? नारद जी स्ट्रगल कर रहे हैं खड़ा खड़ा, क्या करें। चलिए प्रसाद खाने, कोई प्रश्न है किसी को? यस, आपको पूरे गीता में 12 बुद्धि का वर्णन किया गया है, पंडा, विवेक, प्रज्ञा, ज्ञान, स्मृति, ऐसे ऐसे 12 विभाग है। ये पूरा गीता में खोजेंगे आप मिल जाएगा। पंडा तो पहले में ही है, अब तो ज्ञानम सुचस्तम प्रज्ञावादान से भागते प्रज्ञा वहां भी आया है, बदांश गदांश अक्षांद पंडिता, पंडा से पंडित आया हुआ। और कोई प्रश्न? उसको तो शक्ति वहीं से मिल रहा था जहां सबको मिलता है, पावर हाउस से कहीं है ना, भगवान भगवान से शक्ति मिल रहा था, वो भी भगवान का ही है ना, भले असुर है, देवता और असुर, भगवान गीता में कहते हैं ना कि देवा इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, है दैवभूतो है, एक असुर कहलाते हैं और एक देवता कहलाते हैं। तो जहां से देवताओं को शक्ति मिल रहा था वहीं से अपोजिशन पार्टी होना चाहिए ना, तो अपोजिशन वाले थे वहीं से। हाँ, मंगला आरती आना तप है कलयुग में, 16 माला जप करना तप है, दिन भर बकबक करते रह जाएंगे, 16 माला जप करने वाले नानी मर जाएगी उनकी, बड़ी तपस्या है, यही तपस्या कलयुग के लिए। भगवान का प्रसाद खाना तपस्या है, सब नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल, उग्र तपस्या का मतलब वह तपस्या समान लोग नहीं कर पाए, उग्र है, सबके लिए वो नहीं था, उग्र तपस्या ये उग्र है। जैसे मंगला आरती में आना ही तपस्या है, जो स्वस्थ हैं वो लोग आ रहे हैं, जो बीमार हैं वो भी आ जाएं तो स्वस्थ वालों से थोड़ा अच्छा वो तपस्या है, हैं? और जो बिल्कुल बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते हैं, वो भी मंगला आरती आ जाएं तो उग्र तपस्या है। मंगला आरती का आने का तपस्या जो है ना, उसमें भी अब तुम्हारे साथ तुम्हारा तपस्या ठीक था, तो फेल करके तपस्या में, तो मंगला आरती आ जाना चाहिए था तो पास हो गया होता, तुम हुआ श्री केशव हुआ। मुझे याद है जब मैं टेम्पल कमांडर था 83-84 के बाद, एक भक्त थे भाई प्रेम प्रदाय प्रभु, प्रेम प्रदाय को इतना बुखार था, दो ब्लैंकेट ओढ़ करके आकर के प्रभुपाद के पास बैठा हुआ था। मैं क्या प्रेम प्रभु प्रदाय प्रभु, अरे आप क्या ब्लैंकेट ओढ़ लिया गर्मी के दिन में? कहा मुझे बहुत बुखार है, बोल नहीं था, कांप रहा था, मैं देखा था जल रहा था, बहुत बुखार था। तो मैं कहा आराम क्यों नहीं किया? कहा नहीं नहीं प्रभुपाद ने कहा कि रोल ऑन द ग्राउंड बट कम टू मंगला आरती, रोल ऑन द ग्राउंड है, क्या बोलते हैं हिंदी में रोल ऑन द ग्राउंड, लौटते लौटते तबीयत खराब हो लड़ते वक्त तो ही मंगला आरती आओ, और तुम्हारा थोड़ा छींचा हुआ मंगला आरती बंद, बहाना मिलना चाहिए। तपस्या कहाँ करोगे तुम लोग? मुझे हमेशा प्रेम प्रदाय प्रभु का याद आता है। नहीं, वो तपस्या करता इंद्रिय तृप्ति के लिए, तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तपस्या साधक ही होता है, तपस्या नहीं होता है। अब लक्ष्य अलग अलग है, उसका लक्ष्य था इंद्रिय तृप्ति, तुम्हारा लक्ष्य भगवान प्रसन्न करना। चाकू खराब थोड़े है, चाकू सब्जी भी काट सकते हो, गला भी काट सकते हो, चाकू खराब नहीं है, उसका यूज और मिस यूज। वैसे तपस्या खराब नहीं, वो साधन है, तपस्या का यूज और मिस यूज। ऑल राइट, ग्रंथाश्रम भागवतम की जाय, शील प्रभुपाद की जाय, निताय गौर हरि प्रमानंद हरि हरि बोल।